हरिः ओम् हरिः हरिः पवित्रायद्वाणी प्रविशति विचित्रहृदयदा तदाकाराच्छिन्ना भवति निखिलाकारघटिता स्मरामि प्रातस्तम् नयनरमणीयम् सुखकरम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहम् ब्रह्म परमम् नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जयमुदीरये शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 ॐ इत्येतदक्षरमिदग्वं सर्वम् तस्योपव्याख्यानम् भूतम् भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कारो एव यच्चान्यत्र कालातीतम् तदव्योङ्कारो एव सर्वम् ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद मांडुक्य उपनिषद के प्रारंभ में ओंकारोपासना की विधि उपनिषद बताते हैं। ओंकार का जो एक चित्र परंपरा से प्राप्त है वो ध्यान के लिए है, उसका ध्यान करना चाहिए। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। वैसे कठोपनिषद में तो ये लिखा है कि ये सगुण ब्रह्म का भी वाचक है। एतद् आलम्बनम् श्रेष्ठम् एतद् आलम्बनम् परम् एतद् आलम्बनम् ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयसे। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति जो है वो सगुण पक्ष में ही होती है, निर्गुण पक्ष में नहीं होती। इसलिए ये दोनों का वाचक हो जाता है। ये दो भेद जरूर कर लेने चाहिए, सगुण और साकार। साकार तो सगुण है लेकिन सगुण का साकार होना जरूरी नहीं है। ये जो भौतिक चक्षु हैं ये तो आकार को ही देखेंगे, इसीलिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। लेकिन जो ये मानसिक चक्षु है ये तो बिना आकार के भी उसकी कल्पना कर सकता है, इसलिए वो सगुण ब्रह्म होता है। चाहे आप आकार सहित करें और चाहे आप आकार रहित करें, सगुण गुण सहित, निर्गुण गुण रहित, माने गुण जिसमें से निकाल लिए गए, साकार आकार सहित, निराकार आकार रहित। तो आकार तो दोनों में मौजूद है, निराकार में भी आकार है और साकार में भी आकार है, एक दफा उसे चस्पा कर दिया तो साकार हो गया, माने कागज साकार हो गया। और अगर उसमें से मिटा दिया उसको तो कागज ही रहा, तो वो निराकार हो गया। तो कागज पे दृष्टि है तब तो वो निराकार है, चाहे उस पर चित्र हो और चाहे चित्र ना हो। और सिर्फ आकृति के ही ऊपर दृष्टि है तो वो फिर साकार है, लेकिन कागज के बिना तो नहीं है ना, इसलिए वो साकार भी सगुण तो होता ही है। और सगुण जो है उसका साकार होना जरूरी नहीं है, बाजार में तो कोरा कागज मिल जाता है, उस पर चांदिया से चित्र बना दो। ये जो हमको चित्र रूपी कागज मिला हुआ है, ये चित्र कागज के ही समान है, इस पर हजारों चित्र बने हुए। आजकल जो मॉडर्न पेंटिंग जिसको बोलते हैं ना, उसमें उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी सब ऐसी लकीर खींच देते हैं। बोले आप इसमें देखिए, आपको एक खरगोश दिखाई पड़ेगा। अरे कुछ भी तो दिखाई नहीं पड़ रहा। अब उसने कह दिया कि खरगोश दिखाई पड़ेगा। हमारे वहां आश्रम में मंदिर में दो पत्थर लगे हुए, तो बहन जी ने कहा कि देखो इसमें महात्मा के दर्शन होंगे। अब बहुत ही इधर से देख रहे उधर से देख रहे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने बताया देखो ये जो लकीर है ये महात्मा का ये हाथ है, ये जो जब उन्होंने जैसा बता दिया फिर वैसा देखा तो हमें भी महात्मा देख तो उसमें कोई महात्मा था थोड़े। तो ये चश्मा करने की बात है। तो जितनी आकृतियां होती हैं वो सब शब्द मूलक होती हैं, जैसा गुरु ने परंपरा ने बता दिया बस वैसा ही है। लेकिन उससे कागज की कागजता जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा कागज भी तो सगुण है ना, तो निर्गुण क्या है? बोले कागज काय से बना? लकड़ी से बना। लकड़ी काय से बनी? तो चलते चले जाओ ना तो आखिर में आकाश में ही तो पहुंचोगे। तो आकाश जो है वो तो निरूप है, उसमें तो कोई न रूप है न गुण है, सिर्फ एक गुण है शब्द का। उस शब्द से आकाश में चांदन से चित्र बना दो। तो ये जो वेद है यही हमको सगुण या साकार या निर्गुण भी एक शब्द ही है। तो जितने शब्द हैं उन शब्दों से उस निर्गुण निराकार ब्रह्म में एक भाव बनता है, एक आकृति बनती है, एक ज्ञान बनता है। पहले भी शायद मैंने बताया होगा, अब देखो आप मेरी उंगली की तरफ देखना जरा। कुछ बना? एक सर्किल बन गया। लेकिन है क्या सर्किल? आकाश में सर्किल बनाया जा सकता है? तो एक इम्प्रेशन होता है। सपने में जितनी चीजें दिखलाई पड़ती हैं वो सब ऐसे ही इम्प्रेशन मात्र हैं। इसमें भाष्यकार ने लिखा है कि जैसे कपड़े पर छापे मार दिए जाए, ऐसे चित्र रूपी कपड़े के ऊपर ये सब पूर्व अनुभवों के छापे पड़े हुए हैं, वही हम स्वप्न में देखते हैं। तो क्या वही तो हम जागृत में नहीं देख रहे हैं? जब आप कहते हो कि ये मधुसूदन जी हैं, अरे तो ये पहले आपका परिचय होगा ना मधुसूदन का, वरना तो मधुसूदन नाम आया कैसे आपकी जबान पर? और यही मधुसूदन जी हैं, ये जो आइडेंटिफाई किया, मतलब इसमें तो पूर्व ज्ञान आवश्यक है। तो पूर्व ज्ञान जो है वो उत्तर ज्ञान का जनक हो जाता है। अभिप्राय है वस्तु का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ ज्ञान का होना जरूरी है। जैसे सच्चे सांप को देखे बिना भी रस्सी में सर्व का भ्रम हो सकता है। रबड़ का सांप देखा हो आपने, माने उससे मिलती जुलती कोई आकृति देखी हो तो उसका भ्रम हो सकता है। तो चाहे वो निर्गुण हो, चाहे सगुण हो, चाहे साकार हो, चाहे कोई भी उपास्य उपासक भाव जितने हैं, कोई भी हो, ये सब ओंकार में जाकर के समा जाते हैं। सारे मंत्र जो हैं वो ओंकार में जाकर के समा जाते हैं। गायत्री कहां से शुरू होती है? ओम से शुरू होती है ना। वैदिक मंत्र जितने हैं सब ओम से शुरू होते हैं। तो जब उनका संकोच होता है तो संकोच होकर के ओम में ही सब विलीन हो जाते हैं। ओम जो है वो शुद्ध परम सत्य परम ब्रह्म का वाचक है। तो इसलिए ऐसी भावना करो, ध्यान तो करो उस परंपरागत आकृति का और भावना करो कि ये सब ओंकार ही है, ओंकार ही विविध रूपों में ये प्रकट हो रहा है। भूतकाल वस्तु अपने नाम से अलग नहीं होती है, इसको टेक्निकल भाषा में समझना आवश्यक है। जैसे मैंने कहा पदार्थ, तो आपकी बुद्धि में क्या आया? मेटेरियल चीज, बाहर मेटेरियल चीज कोई चीज आई हो, लेकिन टेक्निकल भाषा में ये पदार्थ का अर्थ नहीं है। पद माने जो शब्द आपके मुंह में है उसका जो अर्थ अर्थात वस्तु, उसको पदार्थ बोलते हैं। तो जैसे घट शब्द तो हमारे मुंह में है लेकिन उसका अर्थ क्या है? वो गोल घड़ा जो बाहर रखा हुआ है। बच्चे को जो आप शुरू में ज्ञान कराते हैं वो कैसे कराते हैं? का कबूतर, अब यहां कुछ और बोलते होंगे तो गा गणेश, तो का कबूतर, अब वो बच्चा पहले शुरू में तो ऐसे ही बोलता है, ये क्या है कि का कबूतर? अरे तो कबूतर तो इसलिए बताया कि भाई उसके माध्यम से का की पहचान हो जाए। अब आखिर तक तुम का कबूतर ही करते रहोगे तो फिर तुम्हारा ज्ञान क्या हुआ? नारायण, तो का कबूतर नहीं क, और फिर जब पहचान हो गई तो फिर तो अपने आप ही शब्द मुंह से निकलने लगते हैं, कोई करने की जरूरत ही नहीं होती। नारायण, तो ये भूत में जो वस्तु माने कोई भी वस्तु पदार्थ हो वो अपने शब्द से भिन्न नहीं हो सकती, वरना ज्ञान ही नहीं होगा उसको। गिरा, अर्थ, जल, बीच, सम, कहियत, भिन्न न भिन्न, वंदम सीता राम पद जिन्ही परम प्रिय खिन्न। वाणी और उसका अर्थ ये भिन्न भिन्न भी है और भिन्न नहीं भी है। जल और लहर ये भिन्न भी है और भिन्न नहीं भी है। हवा ना चले, धरती ना घूमे तो समुद्र में कोई लहर नहीं आ सकती, स्टैंड स्टिल रहेगा पानी। तो ऐसे ही भूत में वस्तु और उसका नाम ये दोनों भिन्ना भिन्न है, भिन्न भी है और अभिन्न भी है। तो ओम बोल दिया तो सब नाम उसमें आ जाते हैं। भूतम भवत भविष्यति, वैसे अपने संस्कृत वाले लोगों में तो ये कहावत है, जैसे आजकल बोलते हैं ना बरोबर इधर बोलते हैं बरोबर अंग्रेजी लोगों ने यस सर, तो संस्कृत में बोलते हैं ओम, पंजाबी लोग बोलते हैं हां जी हां जी, स्वीकारोक्ति। ओम माने स्वीकारोक्ति, जो कुछ है सब ओम ही है, इसलिए किसको अस्वीकार करना। तो भूतम भवत भविष्यदिति सर्वमोंकार, ये काल के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं कार्य जगत ये सब ओंकार ही है। अब बोले यच्चान्यत्र कालातीतम तदप्योंकार एव, इन तीनों कालों से जो परे है वो भी ओंकार है। तो क्या है भाई तीनों कालों से परे? तो एक तो स्वयं काल ही तीन कालों से परे है। काल में भूत भविष्य वर्तमान थोड़े ही है, काल तो काल है, बहता पानी है। अब कहीं पे आप हाथ लगा दो बोले इधर का पानी, इधर का पानी, हाथ के नीचे का पानी, यही तो विभाग हुआ। लेकिन पानी तो बह रहा है, काल तो प्रवाही नित्य है, उसमें कोई विभाग नहीं है भूत भविष्य वर्तमान का। तो एक तो काल ही काल त्रिकाल से अतीत है, और जो काल का भी काल है माने काल की उत्पत्ति जहां से होती है, तो कहां से होती है काल की उत्पत्ति, जहां से क्रम की उत्पत्ति होती है, क्रम इसके बाद ये, जहां पहले पीछे का ज्ञान हुआ तो समझो काल की उत्पत्ति हो गई। एक कल्पना की थी किसी नाटककार ने कि कुछ आदमी उसमें कंदरा में घुस गए, कुछ अन्वेषण करना था उन्हें, अब तभी लैंडस्लाइड हो गया और उसका मुंह बंद हो गया गुफा का, अब अंदर घटाटोप अंधेरा, अब कैसे मालूम पड़े कि दिन है कि रात है, अब घड़ी देखें तो घड़ी नहीं दिखे, फिर थोड़े आवाज दें तो बाहर आवाज न जाए, पड़े रहे जो कुछ पास में था खाते पीते रहे, फिर वो घड़ी भी चलनी बंद हो गई। अब उन्हें यही नहीं पता चले कि हम कितने दिन से इसके भीतर घिरे हुए हैं। काल का ज्ञान हमेशा क्रम के ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। महाराज श्री के शब्द हैं, क्रम की संवित का नाम काल है। तो ये क्रम कहां से उदय होता है, बोले जहां से वृत्ति में आगे पीछे होता है, वृत्ति में से ही काल निकलता है। वृत्ति कहां से उदय होती है, वो आत्मा की लहर है। मृत्यु बर्तने धातु है, आत्मा जब बर्तना चाहता है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन इच्छा को क्या करे, ब्रह्म में तो कोई संकल्प हो नहीं सकता, लेकिन हो गया तो उसे पूरा हुए बिना रह नहीं सकता। तो जीवात्मा ने अगर संकल्प न किया होता भोग का पहले, तो ये शरीर पैदा ही नहीं होता, और ये शरीर के पैदा होते ही ये सब देश काल वस्तु सब पैदा हो जाते हैं। ये नितांत वैयक्तिक हैं, देश काल बाहर नहीं है, ये हमारे मन के ही भीतर है। क्योंकि जागृत के जो देश काल हैं वो स्वप्न में नहीं रहते हैं, और स्वप्न के देश काल जागृत में नहीं रहते, और जागृत और स्वप्न के देश काल सुषुप्ति में नहीं रहते। तो वस्तु तो है ही नहीं, सिर्फ प्रतीति के अंतर्गत है। अब रह गई ये पदार्थ वाली बात, तो ये अपने शब्द से अभिन्न है, और शब्द जो हैं जितने हैं वो सब ओम से अभिन्न है, और ओम परमात्मा से अभिन्न है, परमात्मा का नाम है, इसलिए सब परमात्मा ही है, कहीं हीन दृष्टि करने की जरूरत ही नहीं है। अब अपने अपने दुराग्रह को तो हम कह नहीं सकते। बौद्ध कहते हैं कि दुनिया में कोई उपादान ही नहीं है, सब शून्य ही शून्य है। अब क्या कर लोगे, किसी का अनुभव है यह कि सब शून्य है, सबको फिर यही अनुभव होना चाहिए कि मैं तो शून्य हूं। तो किसी को ये अनुभव नहीं होता है कि मैं शून्य हूं, ना ये अनुभव होता है कि जगत शून्य है। बोले नहीं, वो समाधि में जाकर के ये अनुभव हुआ कि मैं शून्य, तो फिर वो समाधि नहीं है। सुषुप्ति में सब कुछ खो जाता है, लेकिन शून्य हूं या है ऐसा भी तो अनुभव नहीं होता। लेकिन मानते हैं कि दुनिया का कोई उपादान है ही नहीं। भौतिकवादी कहते हैं कि नहीं, अगर उपादान कोई है तो ये सब बाहर ही है, भले ही उसका नाम वो मैटर और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और क्या क्या नाम रख लिए हैं। वैशेषिक दर्शन वाले कहते हैं परमाणु हैं, उनके परमाणु और ये साइंस वाले परमाणु एक नहीं है, ये ध्यान में रखना है। शब्द तो परमाणु है, जो पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उसमें जो परमाणु की परिभाषा थी लगभग वही परिभाषा वैशेषिक दर्शन की परमाणु की है, लेकिन आजकल जो परमाणु की साइंस की परिभाषा है वो बिल्कुल अलग है। डाल्टन का परमाणु तो अविभाज्य था, उसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते थे, और आज जो परमाणु है वो तो विभाज्य है, एटम बम बनाई दिया ना है। और कहां पहुंच गए कि एनर्जी में पहुंच गए जो उसके भीतर है। अब वो एनर्जी कभी मैटर बन जाती है कभी एनर्जी, लेकिन है तो दोनों भौतिक ही ना, एनर्जी कहो तो भी भौतिक है, तो ये चेतना कहां से आ गई, ये एनर्जी है कि मैटर है। चेतना माने ज्ञान, ज्ञान कहां से निकल आया, तो बोले निकल सकता है भौतिक से ही निकल सकता है। कैसे निकल सकता है कि हरा पान खाओ होठ लाल हो जाएंगे। तो जैसे हरा पान खाने से लाली निकल जाती है नारायण, ऐसे ही केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं उसमें से ज्ञान निकल जाता है। गोबर पानी मिलाकर रख दो एक जगह, थोड़े दिन पीछे उस पर कीड़े पड़ जाएंगे, तो कीड़े कहां से पड़ गए, बोले उसी गोबर पानी में से पैदा हो गए। लेकिन डॉक्टर से ऐसा नहीं मानते, हर चीज के जर्म्स जो है उनके बीच सब जगह मौजूद रहते हैं, सिर्फ गोबर पानी से उनका बढ़ने के लिए अवसर मिल जाता, बिना बीज के कोई सृष्टि नहीं होती। अच्छा, बाकी जितने मानने वाले हैं संसार के कारण को, वो चाहे सांख्यवादी हो, वो प्रकृति को कारण मानते हैं, तो प्रकृति कभी आंख से या किसी इंद्रिय से देखी नहीं जा सकती, वो नित्य अनुमित है। तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, तो जब साम्यावस्था हो जाएगी तो तुम्हारी बुद्धि कहां बचेगी, फिर देखोगे कैसे, बुद्धि भी साम्यावस्था में पहुंच जाएगी। तो प्रकृति कभी प्रत्यक्ष का विषय नहीं होती है। अब बोले कि अमुक अमुक देवता ने बनाई है, तो वो देवता भी जो है प्रत्यक्ष नहीं होते, सब भीतर ही मालूम पड़ते हैं, इसलिए इनको अंतरंग उपादानवादी बोलते हैं दर्शन शास्त्र की भाषा। तो बौद्ध जो है ये शून्यवादी, बौद्ध जो है ये निरुपादानवादी, और साइंस वाले लोग और वैशेषिक लोग ये बहिरंग उपादानवादी हैं, और बाकी जितने संसार के कारण को मानने वाले हैं वो चाहे प्रकृति को माने, चाहे ईश्वर को माने, चाहे दृष्टि सृष्टिवादी वेदांती हो, क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध हो, ये सब के सब अंतरंग उपादानवादी हैं। लेकिन यहां ये तो विकल्प है ही नहीं कि क्या सच है, यहां तो ये कह रहे हैं जो भी तुम मानते हो मान लो। महाराष्ट्र ने एक बात बहुत बढ़िया समझाई, उन्होंने कहा संसार के बारे में चाहे कार्य का विचार हो चाहे कारण का विचार हो, जब तक वो अनिर्वचनीय कोटि तक तुम्हारा विचार न पहुंच जाए तब तक उस विचार को तुम परम सत्य मत मानना, नहीं वो तो एक बुद्धि का आग्रह है, जैसे तुम्हारी बुद्धि है ऐसे दूसरे की भी बुद्धि है, वो अपनी बात समझता है तुम अपनी बात समझते हो। तो अनिर्वचनीय क्या है कि हां ऐसे भी हो सकता है, हां ऐसे भी हो सकता है। काहे की झगड़ा करते हो, ये तो बुद्धि का आग्रह है, कोई जरा ज्यादा सच है कोई जरा कम सच है। नहीं तो सब झूठे हैं। अजात ही एकमात्र वेद का सिद्धांत है। न कश्चित जायते जीव संभवोश्च न विद्यते। ये तो मांडुक्य कारिका का वज्र श्लोक है ना। किसी चीज की कभी कोई उत्पत्ति ही नहीं होती, सब ब्रह्म जो का त्यों ही रहता है। उस ब्रह्म का वाचक ओम है, उस ओम का उच्चारण करो, उसके साथ एक हो जाओ, बस इतनी साधना इसमें पर्याप्त। अब कहते हैं कि ये तो ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय हुआ। भाष्य में यही लिखा है, प्रतिपत्ति उपाय, ब्रह्म के ज्ञान के लिए उपाय हुआ ये ओंकार का साधन। तो उपाय सच्चा होता है या उपे उससे जो प्राप्त होती है वो चीज सच्ची होती है? तुम्हारा उपाय सच्चा के झूठा? ब्रह्म तो सच्चा है, लेकिन अगर उपाय सच्चा है तो दो सत्य हो गए, तुम द्वैतवादी हो। और उपाय झूठा है तो झूठे उपाय से सत्य ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो बोले भाई, हम ओम में और ब्रह्म में, माने साधन में और साध्य में, हम कोई अंतर नहीं करते। जो बात हमने ओम के लिए कही है, अब चलो ब्रह्म के लिए कह देते हैं। दूसरे मंत्र में सर्वम हे तद ब्रह्म, पहले क्या कहा था, ओंकारे वेदम सर्वम ओम। पहले सब ओम था, अब बोले कि ये ब्रह्म ही सब है। अर्थात ब्रह्म और ओम इनमें भेद मत करो। नारायण, ब्रह्म को हमने देखा नहीं है, सुना है, शब्द रूप है। तो एक छोटा सा शब्द शास्त्र पकड़ा देता है, ओम सबसे छोटा, इसीलिए इसको अक्षर ही बोला, ध्वनि मान लो। सर्वं येतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म। अब ये बात पहले मंत्र में नहीं कही गई थी, ये आत्मा भी ओम है ये ऐसा नहीं कहा था। अब यहां कह रहे हैं कि ये आत्मा ब्रह्म है, ये विशेष है। स अयम आत्मा चतुष्पात, स माने वही जो ब्रह्म परोक्ष, जिसको ब्रह्म शब्द से जाना जाता है, और अयम आत्मा, अयम माने ये प्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से जिसको हम मैं करके जानते हैं, ये दोनों एक ही चीज है, दोनों ब्रह्म है। तो कैसे ज्ञान हो इसका, कि चतुष्पात, इसको चार भागों में विभाग करके अब हम समझाते हैं। यही उपव्याख्यान है इसका। स्वामी महेशानंद जी महाराज ने एक बात लिखी है कि ओंकार का सिर्फ मान लो जप ही करें, जैसे राम 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 बोलते हैं, ऐसे ओम 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 बोले, तो क्या ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहां तो ध्यान का प्रसंग चल रहा है, तो उसके क्या जप मात्र से ज्ञान होगा कि नहीं होगा? तो कहते हैं कि हो तो सकता है, बशर्ते कि जप में दो चीजें का ख्याल रखा जाए। जब नाम और नामी एक ही है तो नहीं होने का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए उसमें। एक तो ये कि उसे अनेक इष्ट के प्रति समर्पित नहीं होना चाहिए। बोले एक माला उसकी भी कर लो, एक माला उसकी भी कर लो, एक माला उसकी भी कर लो, तो अब क्या, एक फावड़ा यहां मारोगे, एक फावड़ा यहां मारोगे, एक फावड़ा यहां मारोगे, तो कहीं भी पानी निकलने वाला नहीं है। और उसी फावड़े को एक ही जगह मारते रहो तो कभी ना कभी तो पानी निकलेगा। तो एक तो इसमें एक निष्ठता होनी चाहिए, लक्ष्य की और साधन की। बोले अपने मन से तो हम ओम कर लेते हैं, एक सज्जन कह गए गृहस्थों को ओम नहीं जपना चाहिए। तो बोले फिर क्या करें, कि हरि ओम कर लिया करो। अच्छा, दूसरे आए बोले नहीं ये तो सांप्रदायिक बातें हैं, आप राम राम बोलो, ये बहुत सरल है। अब राम राम चलने लगा नारायण। कृष्ण वाले आए, कृष्ण को पकड़ा गया। तो ये जो अनेक इष्टों में बुद्धि जाती है, इससे जप अपना फल नहीं देता। एक इष्ट एक मंत्र, एक ग्रंथ एक पंथ, ऐसा महाराज जी बोलते थे। तो ठीक है, अब चैतन्य महाप्रभु से स्वामी प्रबोधानंद जी ने कहा कि तुम इतने बड़े नैयायिक हो, विद्वान हो, तुमको तो विद्वानों के साथ ये नच के ही गवाइयों के साथ जो घूमते फिरते हो, हरे राम करते फिरते रहो, तो ये कहां। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो बहुत बढ़िया, वो निष्ठा के लिए है। बोले हमारे गुरुजी ने हमको इसी काबिल समझा होगा, इसलिए हम तो उसी के प्रति समर्पित हैं। हम अपनी योग्यता के अनुसार नहीं करते, गुरु आज्ञा के अनुसार करते। आखिर कितने गुरु बनाओगे, एक गुरु से संतोष नहीं होता। जहां भी श्रद्धा तो घूमती फिरती है, किसी के भी गले में माला डालने को तैयार। नारायण, तो एक तो इसमें इष्ट और मंत्र के प्रति एक निष्ठता होनी चाहिए, और दूसरे जप भी करते जा रहे हैं और टेलीफोन भी सुनते जा रहे हैं, और भी बहुत से काम करते रहे। आजकल कहते हैं ना सब, किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, हमें तो टेप सुनना अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है, इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो ये है कि टेप सुनते सुनते हम दूसरे काम भी कर सकते हैं, और किताब पढ़ते पढ़ते दूसरे काम नहीं कर सकते। नारायण, यहीं की बताते थे महाराज श्री, कि किसी ने कहा महाराज जी आपको रुपया चाहिए, रुपया ले लो, कोई किसी को दिलवाना हो तो हम दे दें, लेकिन हमसे वक्त की बात मत करो, टाइम हम नहीं दे सकते। तो महाराज जी बोले हाँ भाई, आपके पास वक्त कहाँ है, आप तो कम वक्त हैं। उच्चारण का ही तो फर्क है। थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो कम वक्त का दूसरा मतलब भी निकल जाएगा। तो जितने टाइम हो एक निष्ठा से होना चाहिए। तो दूसरा कोई उस टाइम में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है, ये जो कर्मकांडी लोग निगाह वाले होते हैं, वो कहते हैं इतने इतने करोड़ मंत्रों का जप करेंगे, भगवान का दर्शन होगा कैसे। नहीं, भगवान तो नाम के अधीन है। तो बोले भगवान किसी के अधीन नहीं है, ये जो भगवान को किसी साधन के अधीन मानना है, ये भी जप में हानिकारक है, वो फल नहीं देता। भगवान तो अगर आपके ऊपर कृपा करेंगे तो अपनी तरफ से कृपा करेंगे, न करें कब करें कहां करें ये तो उनकी इच्छा के ऊपर है, आपका काम सिर्फ जप करना है। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तम नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन वासु। ज्ञान दीपक तो जलाएंगे वो, और कृपा करके ही जलाएंगे। तेषाम एव अनुकंपार्थम एव, अनुकंपा करने के लिए ही जलाएंगे। लेकिन उसके लिए आप समय निर्धारित कर दो कि बस इस टाइम तक हो जाना चाहिए, नहीं तो बोले नहीं तो क्या कि हम आपका नाम जपना छोड़ देंगे मैंने तो कभी नहीं कहा कि तू मेरा नाम जप हरिओम। तो सर्वम हेतद ब्रह्म, तो ब्रह्म कहो ओम कहो, इसमें साध्य साधन में कोई भेद करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप कहते हो सब ओंकार है, तो भगवान कहते हैं कि सब ब्रह्म है, यही तुम्हारा तात्पर्य है। मैं समझता हूं, क्योंकि मेरा नाम है, तो मुझे चाहे ओम के नाम से बुलाओ चाहे किसी के साथ। अब इसकी व्याख्या यहां पे इतनी रहने दो, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सर्वम एतद् ब्रह्म, ये तो वेदांत का सिद्धांत है ना। ज्यादा व्याख्या करेंगे तो फिर इसी में सारा काम हो जाएगा, उपनिषद तो धरा ही रह जाएगा। तो सर्वम एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य है नारायण, अयम आत्मा ब्रह्म, ये अथर्ववेद का उपनिषद है, ये उसका महावाक्य है। तो जैसा आपको मालूम ही है, यहां तो वेदांति ही हैं सब लोग। वेद में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक अवांतर वाक्य और एक महावाक्य। तो जितने साधन साध्य संबंधी बातें हैं वो सब अवांतर वाक्य के अंतर्गत, और जहां ऐक्य का अनुसंधान है, चाहे वो आत्मा और ब्रह्म की एकता का हो, चाहे ब्रह्म और जगत की एकता का हो, चाहे ब्रह्म और ईश्वर की एकता का हो, ये जितने भी ऐक्य के स्थान हैं, ये इनके जो वाक्य हैं वो सब महावाक्य कहलाते हैं। तो बिना महावाक्य का विचार किए हुए वेदांत सिद्धांत का बोध नहीं होता, अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, ये पक्का सिद्धांत है। तो ये अयम आत्मा ब्रह्म, अयम माने यही, इसको भाष्यकार ने लिखा कि अंगुली निर्देशन न्याय है, जैसे उंगली से दिखावे कि देखो यही अयम जिसको तुम मैं बोल रहे हो, अयम आत्मा यही ब्रह्म है। इसमें जरा माफ करना, थोड़ा भेद कर लो, मैं ब्रह्म हूं और अयम आत्मा ब्रह्म, इसमें थोड़ा फर्क है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि में तो मैं ब्रह्म हूं, और अयम आत्मा ब्रह्म में मैं शब्द का प्रयोग नहीं है, आत्मा शब्द का प्रयोग है। वैसे आत्मा का अर्थ भी मैं होता है, लेकिन ये मैं जो है ये आत्मा का नाम है, क्योंकि इस मैं का तो सुषुप्ति में ही दर्शन नहीं होता, जिसको मैं बोलते हैं। अगर इसको ब्रह्म बताना इष्ट हो, ये छुटभैया जो है, अगर इसको ब्रह्म बताना इष्ट हो तो वेदांत तो उल्टी पलटी बात बोलने लगेगा। अरे बोले, इस छुटभैयेपने को छोड़ करके जो मैं है वो मैं ब्रह्म है, उसी का नाम आत्मा है। मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। एक हंसी की बात सुना रहे, तो एक सज्जन नाक में बोलते थे, तो अपने बच्चे को, टीचर थे प्राइमरी में, तो उन बच्चे को उन्होंने भेजा उसके पास पढ़ने के लिए। अब उसने पढ़ाना शुरू किया, वो पंडित जी नाक में बोलते थे, तो बोले बोल बेटा ख। अब वो बालक आया घर पे, बोले आज क्या पढ़ा, बोले ख। हमको तो मास्टर जी ने यही बताया। अब एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, फिर वो टीचर के पास गए, बोले आप क्या पढ़ाते हो, बोले मैं तो ठीक पढ़ाता हूं, बोले पढ़वाइए, बोले बोल बेटा, तो बोला बोले ये कौ है क्या, तो बोले क्या है फिर, बोले ये क ख है, तो बोले यही तो बोल रहा हूं मैं क ख। तो बच्चे से बोले तो बेटा मेरा वाला क ख नहीं, पिताजी का तो ये मैं जो छोटा सा मैं, ये मैं नहीं, कौन ये शास्त्र जिसको मैं बोलता है अस्मत् प्रसिद्धम, ये तो उसकी प्रसिद्धि कर रहा है सर कि हाँ आत्मा नाम की कोई चीज है। महाराज श्री कहते थे जैसे दाल में चुरुर चुरुर बोलती है, तो वो उसके पकने का लक्षण है कि खद का पड़ रहा है भैया, अब ठीक है, बनने वाली है दाल। तो ये आत्मा जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहता है, अहम 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 अहम। एक बात, दूसरी बात ये कि जैसे मान लो मैं इस फूल को देख रहा हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं, ये भी स्वामी महेशानंद जी महाराज ने लिखा, बोले पदार्थ तो हमको दिखता ही नहीं है, आत्मा है, आत्मा के बाद अज्ञान है, अज्ञान से फिर अहम की उत्पत्ति होती है, फिर अहम से मन की उत्पत्ति होती है, फिर मन से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, फिर नेत्र का विषय है यदि तो फिर सूर्य का प्रकाश चाहिए, और फिर वस्तु में जो रंग है वो चाहिए, उसकी रिफ्लेक्टिंग पावर चाहिए, इतनी सब चीजें देखते हैं लेकिन वस्तु तो हमको दिखाई नहीं पड़ती है ना। तो ब्रह्म क्या चीज है इसमें, सब ब्रह्म है ये तो कह दिया हमने, लेकिन ब्रह्म है क्या। इसीलिए कहा कि बाहर तो तुम्हें ये सात पर्दे वाली चीज नकाबपोष मिलेगा यहां ब्रह्म तो, लेकिन ये जो आत्मा है यहां का नकाब आप हम आसानी से हटा सकते हो, इन सातों पर्दों को यहां पे फाड़ दो यहां पे, तो आत्म का जो साक्षात्कार होता है उसी को ब्रह्म साक्षात्कार बोलते हैं। फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये फूल भी ब्रह्म है, और फूल ब्रह्म है यहां से शुरू करोगे तो ये अयम आत्मा ब्रह्म नहीं होगा। तो स्वयं आत्मा चतुष्पाद, पहले त्वम पदार्थ का विवेचन स्पष्ट होना चाहिए आत्मतत्व का, उसके बाद तत्पदार्थ का विवेचन होना चाहिए। लेकिन साधक दो तरह के होते हैं, कुछ भाव प्रधान होते हैं तो पहले वो तत्पदार्थ से का शोधन करते हैं, लेकिन वो वेदांत में बहुत उपयोगी नहीं होता, क्योंकि तत्पदार्थ के शोधन में कार्य कारण प्रक्रिया बस यही है, और तो कोई प्रक्रिया है नहीं, किसी ने ईश्वर को सृष्टि बनाते हुए देखा नहीं है, देखा भी नहीं है और देखा जा सकता भी नहीं है, इसलिए वो भाव मूलक ही रहता है वहां कार्य कारण। कार्य कारण हमेशा प्रत्यक्ष में तो सिद्ध होता है, ये माला जिसने बनाई जिससे बनाई वो सब चीजें प्रत्यक्ष हैं, माला तैयार हो गई, तो प्रत्यक्ष में तो कार्य कारण किसी सीमा तक ठीक है, लेकिन जो चीज अनुभव में ही नहीं आती किसी के में, उससे प्रत्यक्ष की सिद्धि करने लगो तो विश्वास तो ठीक है लेकिन वो अनुभव का विषय नहीं बन सकता। और ये जो आत्मदेव है ये तो अनुभवात्मा है, सारे अनुभव इसी से होते हैं, यहीं बैठ करके होते हैं, इसी में होते हैं, इसलिए यहां तो आप अनुभव कर सकते हो। इसमें से सिर्फ जो इसके पर्दे हैं वो निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब वो कोशिश कैसे करें कि स्वयं आत्मा चतुष्पाद, इसको चार भागों में विभक्त करके इस आत्मा का साक्षात्कार करो। अब ये प्रक्रिया हुई, इसका नाम प्रक्रिया, स्वयं आत्मा चतुष्पाद। तो भाष्यकार ने लिखा कि जैसे गाय के चार पैर होते हैं ऐसे ही क्या आत्मा के भी चार पैर होते हैं, पाद माने पैर, तो चतुष्पाद माने पशु जैसे चार पैर वाला होता है तो आत्मा भी क्या ऐसे ही पशु है चार पैर वाला है। अरे बोले नहीं भाई, गऊ की तरह से चार पैर वाला नहीं, जैसे रुपए में चार चवन्नी होती है, या कहीं का सिक्के का नाम लिखा है भाष्यकार ने कारशापण, तो रुपए की जगह चलता होगा तो कारशापण में भी चार चवन्नी चार हिस्से। अब आपके पास रुपया है मान लो, उसके चार टुकड़े करके कहें कि ला भाई चवन्नी की सब्जी दे दे, तो कोई नहीं देने वाला है। चवन्नी का सिक्का दोगे तब तो मिल जाएगा, टुकड़े का सिक्का नहीं चलेगा, और आजकल तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, पहले तो शायद चांदी थी तो इसलिए दे भी सकते थे, तो उसमें कुछ है ही नहीं। वो तो कागज के नोट में चार टुकड़े करोगे तो क्या मिलेगा। तो इसको तोड़ना मोड़ना नहीं है, बस समझ करके छोड़ देना है। चार जगह इस आत्मा का दर्शन करो, ये इसका मतलब। तो सबसे पहले कहां करें, बोले जागृत अवस्था में करो। देखो जितने अज्ञान हैं वो भी जागृत अवस्था में हैं, और जितने ज्ञान होते हैं वो भी जागृत अवस्था में। सपने का न ज्ञान का कोई मतलब है न सपने के अज्ञान का कोई मतलब है, क्योंकि वहां तो समूचा स्वप्न ही एक तरह से झूठ की कक्षा में है, इसलिए उससे कुछ होता वाता नहीं। वैसे विचार सागरी वेदांत जो है उसमें ऐसा मानते हैं कि सपने में भी किसी को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो जाए तो भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो अर्थवाद है, वो वास्तविकता नहीं है। अज्ञान हमेशा शब्द मूलक होता है, ये अगर कोई वेदांती है तो उसको ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि अज्ञान हमेशा शब्द मूलक होता है। जैसे मुझे फूल का ज्ञान नहीं है, मैं कहता हूं ये तो चमेली का फूल है, है तो गेंदे का फूल, अब ज्ञान नहीं है तो इसलिए मैं कहूंगा ये तो चमेली का फूल है, तो क्या मुझे ज्ञान नहीं हो रहा? रूप का भी ज्ञान तो हो रहा है लेकिन मिथ्या ज्ञान हो रहा है। तो मिथ्या ज्ञान को ही अज्ञान बोलते हैं, और ये गेंदा की जगह जो चमेली आ गई, माने राइट वर्ड्स की जगह जो रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल हो गया, ये भी अज्ञानी हो गया। अज्ञान जो होता है वो हमेशा शब्द मूलक होता है, बिना शब्द का कोई अज्ञान नहीं होता। इसलिए अगर अज्ञान को काटना है तो वो भी शब्द से ही कटेगा। जो कहते हैं कि समाधि लगा लो तो हमारा अज्ञान भाग जाएगा, तो वो समाधि में तो शब्द ही नहीं रहता ना रहे। हां पहले जागृत अवस्था में आपका अज्ञान निवृत्त तो हो जाए, फिर आप समाधि में अगर इच्छा होगी लगाओगे तो समाधि में भी आपको वही अनुभव होगा, लेकिन समाधि में अनुभव होगा जागृत में अनुभव नहीं होगा ऐसा नहीं है ना, यहीं बैठे बैठे ही अनुभव होगा। आपको चाहिए तो आप श्रद्धा विश्वास पूर्वक आप सुने किसी की भी वाणी जहां भी आपकी श्रद्धा जमती हो और लगातार सुने, अनुभव हुए बिना रहता नहीं है, क्योंकि अनुभव स्वरूप तो आत्मा है ही है, सिर्फ अरे की बात है, अरे अच्छा ऐसा है, स्वीकृति हो गई। अभी तो मेरी स्वीकृति है कि मैं मनुष्य हूं, मैं आदमी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढमका हूं, जो मैं नहीं हूं वास्तव में उनकी स्वीकृति तो हमारी हो रही है, और जो मैं हूं उसको हम पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं है। तो ये जो अन्यथा ज्ञान है, माने दूसरा दूसरे रूप में जो ज्ञान हो रहा है, इनको काटना है। तो ये शब्द से ही कटता, हीरा ही हीरे को काटता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये वेदांतियों पे आक्षेप भी करते हैं ना, कि ये तो खटपट में ही रहते हैं, शांति में, आत्मा तो शांति है, मेरे को जाओ हिमालय में, वहां जाकर आपको मिलेगा। वो सहकारी साधन तो हो सकता है शांति इत्यादि, लेकिन मुख्य साधन नहीं है। यहां भी हो सकता है और भीड़ में भी हो सकता है। अष्टावक्र जी ने कहा ना, अरे मैं तो जन समूह में रहता हूं लेकिन मुझे तो द्वैत दिखता ही नहीं है। तो दुनिया कहां है, सड़क पर चलते हो इतनी भीड़ चल रही है ना, कि कोई ना आपको पहचाने ना आप किसी को पहचाने, तो आप तो अकेले ही हो। जब कोई नहीं दिखेगा तब समझोगे कि मैं अकेला हूं। जब आप किसी दूसरे को पहचानते हो तो दुखेले हो जाते। तो कहते हैं पहले जागृत अवस्था में इसको पहचानो। अब कैसे पहचाने, ये तीसरा मंत्र है, बस पाठ तो कर ही देता हूं इसका। जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख स्थूल भुक् वैश्वानर प्रथम पाद। ये पहला चरण है जागृत अवस्था। इसमें सब में सात सात विभाग हैं। जैसे यहां गिन लो, जागृत स्थान एक, बहिष्प्रज्ञ दो, सप्तांग तीन, एकोन विंशति मुख चार, स्थूल भुक् पांच, वैश्वानर छह और प्रथमा पाद ये सात। ऐसे ही स्वप्न में भी सात विभाग करके बताएंगे और सुषुप्ति में भी सात विभाग करके बताएंगे। और फिर जब तीनों जगह आत्मा की पहचान हो जाएगी तब फिर कहेंगे अब असली आत्मा को सुनो, तो तीनों का सप्पम सप्पा वो सातवां मंत्र है। देखो कहां तक पहुंचते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरी ओम।